ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। देश को गरीबी से मुक्त करने के बाद ही समृद्धि की आकांक्षा की जा सकती है पूरी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। निर्वाचन प्रणाली को सुधार करने के लिए कानून संशोधन करना होगा। कानून मंत्री अजय कुमार चौरसिया ने दिया जोर। देश भर में डेंगू और हैजा के मरीजों की संख्या बढ़ने से सतर्कता अपनाने का स्वास्थ्य मंत्रालय का सभी से आग्रह। और गजा के एक विद्यालय में इजराइल द्वारा रॉकेट आक्रमण में कम से कम 100 से अधिक लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि देश को गरीबी से मुक्त नहीं किया गया तो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली का राष्ट्रीय आकांक्षा पूरा नहीं हो पाएगा। आज लायंस द्वारा काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि नेपाल को अल्प विकसित अवस्था में स्तरोन्नति कराने के लिए रोजगारी, उत्पादन और उद्यमशीलता पर जोर देते आ रहे हैं। देश में अभी भी 20% नागरिक गरीबी के रेखा के नीचे होने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि भूखा बच्चे और लोगों को खाने और लगाने की वातावरण नहीं दिया जा सका तो समृद्ध नेपाल का परिकल्पना करने का सार्थकता नहीं होगा। प्रधानमंत्री ओली ने यह भी कहा कि समाज को सुव्यवस्थित करने का काम राजनीति और राजनीतिक दलों का है। आज ही काठमांडू के थैटी स्थित धर्मकीर्ति बिहार में आयोजित प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि अभी के समय में विश्व में पहले से ही अधिक शांति की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ओली ने यह भी कहा कि अभी के समय में विश्व को शांति, करुणा, मानवता, स्नेह, ममता, दया और परोपकार भाव का बहुत आवश्यकता है और इसके लिए बुद्ध का शिक्षा महत्वपूर्ण है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुबा गुरुंग ने कहा कि राजनीतिक स्थायित्व सहित आर्थिक विकास और सुशासन कायम करने के लिए प्रमुख दो दलों के बीच में सहकार्य हुआ है। आज नेकपा एमाले कास्की द्वारा पोखरा में आयोजित अगुआ कार्यकर्ता भेंटघाट कार्यक्रम में मंत्री गुरुंग ने कहा कि जनता में विकास और आशा जगाने के लिए वर्तमान सरकार का गठन हुआ है। मंत्री गुरुंग ने कहा कि संसदीय व्यवस्था रहे देशों में दो बड़े दल मिलकर शायद ही सरकार बना होगा, लेकिन नेपाल के लिए ये कोई नई अभ्यास नहीं है। आज ही पोखरा स्थित हुलाक निर्देशनालय के निरीक्षण के बाद मंत्री गुरुंग ने कहा कि हुलाक संबंधी पुराना नीति नियम को परिमार्जन करने के लिए हुलाक सेवा को नियम सापेक्ष बनाना होगा। कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री अजय कुमार चौरसिया ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को और भी सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार कानून संशोधन करने की तैयारी में जुटी हुई है। आज बीरगंज में आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री चौरसिया ने कहा कि कानून संशोधन के मार्फत से निर्वाचन प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता देखा गया है। मंत्री चौरसिया ने कहा कि संघीय, प्रदेश और स्थानीय सरकार में हो रहे विकृति विसंगति का अंत करने के लिए भी कानून संशोधन आवश्यक है। नेकपा माओवादी केंद्र ने बृहत वामपंथी एकता के लिए पहल करने जा रही है। आज पार्टी केंद्रीय कार्यालय पेरिस डाड़ा में हुए पार्टी की स्थायी समिति की बैठक में पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने बृहत वामपंथी एकता के लिए पहल करने और स्पष्ट कार्य दिशा के साथ जनता में जाने का प्रस्ताव रखे हैं। यह जानकारी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि प्रसाद सापकोटा ने दी। बैठक में देश और जनता के एजेंडा को प्रभावकारी रूप में सदन और सड़क मार्फत उठाने, संघर्ष के कार्यक्रम को दोनों स्थान से प्रभावकारी रूप में उठाने और बृहत वामपंथी एकता के लिए पहल करने के विषय पर आज के बैठक में विचार विमर्श हुआ है। ये जानकारी प्रवक्ता सापकोटा ने दी। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन थापा ने कहा कि देश में अब कुछ नहीं होगा, इस बात की चिंता को लेकर जनता में रहे निराशा को अंत करना जरूरी है। आज महामंत्री थापा ने नेपाली कांग्रेस के नेता तथा शिक्षा सेवी स्वर्गीय श्याम बहादुर कार्की के 17वां स्मृति दिवस के अवसर पर बालकोट में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि नेपाल में कोई भी अच्छा काम नहीं हुआ है का भाष्य निर्माण किया जा रहा है। देश में कुछ भी नहीं हुआ है के भाष्य निर्माण का प्रयास किए जाने की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि देश विकास के लिए अभी बहुत कुछ किया जा सकता है का विश्वास जगाना आवश्यक है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G यो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को फोर जी
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को फोर जी
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को फोर जी आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को फोर जी
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। पिछले समय में डेंगू और हैजा का संक्रमितों की संख्या में वृद्धि हुआ है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडीमियोलॉजी तथा सरुआ रोग नियंत्रण महाशाखा के अनुसार डेंगू संक्रमितों का संख्या 3084 पहुंच गया है। अभी चार दिनों में 722 लोग डेंगू संक्रमितों का संख्या बढ़ गया है। ये जानकारी महाशाखा के कीटजन्य रोग शाखा के प्रमुख डॉ गोकर्ण प्रसाद दहाल ने दी। इसी तरह महाशाखा के अनुसार हैजा के मरीजों की संख्या 47 पहुंच गया है। बता दें कि ललितपुर काठमांडू प्यूठान कैलाली और रूपंदेही में हैजा का मरीज पाया गया है। डेंगू और हैजा के मरीजों को बढ़ने के बाद सतर्कता अपनाने का स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने सभी से आग्रह किया है। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह ने कहा कि सरकार ने समाज में दिख रहे निराशा को कम करके हटाने और नागरिकों का दैनिकी सहज बनाएगी। आज काठमांडू क्षेत्र नंबर एक में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री सिंह ने कहा कि सरकार ने जनता को अनुभूति कराने के हिसाब से काम करके निराशा को हटाएगी। बाजरा की हिमाली गांवपालिका स्थित गोरू खर्क में भूस्खलन होने से चार स्थानीय घायल हुए हैं तो वहीं दर्जनों पशु चौपाया दब गया है। आज सुबह आए बारिश के साथ भूस्खलन में दबकर हिमाली गांवपालिका वार्ड नंबर 3 के चार लोग घायल हुए हैं। ये जानकारी हिमाली गांवपालिका के वार्ड नंबर 3 के वार्ड अध्यक्ष मंगल बुढ़ा ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजराइल ने गजा के एक स्कूल पर बड़ा हवाई हमला किया। इस हमले में 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। फिलिस्तीनी के स्वास्थ्य अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि गजा में विस्थापित लोगों को आश्रय देने वाले स्कूल पर इजरायली हमले में 100 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। इस हमले में कई दर्जनों लोग घायल हैं। दूसरी ओर इजरायली सेना ने कहा है कि उसने हमास के एक कमांडर सेंटर पर हमला किया है। वहीं हमास द्वारा संचालित मीडिया कार्यालय ने एक बयान में कहा, इजरायली हमलों को लक्ष्य फ्रज सुबह की नमाज अदा कर रहे विस्थापित लोग थे। इसकी वजह से मरने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इजरायली वायुसेना ने कहा कि हमने अल तवाहिन स्कूल में स्थित हमास कमांड और नियंत्रण केंद्र में सक्रिय हमास के आतंकवादियों पर सटीक हमला किया। स्कूल दराज तुम्फा में एक मस्जिद के बगल में मौजूद है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश को गरीबी से मुक्त करने के बाद ही समृद्धि की आकांक्षा की जा सकती है पूरी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन, निर्वाचन प्रणाली को सुधार करने के लिए कानून संशोधन करना होगा। कानून मंत्री अजय कुमार चौरसिया ने दिया जोर, देश भर में डेंगू और हैजा के मरीजों की संख्या बढ़ने से सतर्कता अपनाने का स्वास्थ्य मंत्रालय का सभी से आग्रह। और गजा के एक विद्यालय में इसराइल द्वारा रॉकेट आक्रमण में कम से कम 100 से अधिक लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।